Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Oh, to kahan tak hua hai? Hai? हाँ, पूर्णानंद ब्रह्मात्मानं वश्यतो मोक्ष सिद्धि प्रकारः. यहां से कथम तस्मात् आत्मानं पश्यतो मोक्ष सिद्धि रीति अतः आह, है ना? तो ऊपर ये बताया गया था कि वह सप्रपंच जगत से अलग किया हुआ ब्रह्म को, असंग ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, उसके जानने से वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है. ये जो ऊपर कहा गया था, उसके बाद पूर्व पक्ष ने यहां कहा कथम तस्य आत्मानं पश्यत. मोक्ष सिद्धि रीति, उस ब्रह्म को जानकर मोक्ष कैसे सिद्ध होता है? आहा, तो उसके उत्तर में कहा जाता है अत्र अस्मिन् अन्नमयाद्य आनंदमयान्ति. इस प्रसंग में तुम्हें यह बताना जरूरी है अन्नमय आदि से आनंदमय अंत. पहला कोष अन्नमय, अंतिम कोष आनंदमय, तो बीच के तीन कोष प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय. तो अत्र अस्मिन् अन्नमयादि आनंदमयांते देहे, अस्मिन् देहे विराट अभ्याकृतांते वह प्रपंचे. व्यष्टि में अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत और समष्टि में विराट, हिरण्यगर्भ और माया, अव्यक्त माने माया. विराट से शुरू करके अव्यक्त माने माया पर्यंत ये परमात्मा के यानी ईश्वर के तीन शरीर हैं. समष्टि स्थूल विराट, समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ और समष्टि कारण अव्यक्तार्थात माया. अव्यक्तार्थात माया, यहां ध्यान देना. और व्यष्टि स्थूल अन्नमय कोष, व्यष्टि सूक्ष्म प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष और व्यष्टि कारण आनंदमय कोष. तो व्यष्टि और समष्टि का इस तरह चिंतन करना, तो दोनों का यहां भाष्यकार ने संकेत कर दिया है. व्यष्टि स्थूल क्या है? अन्नमय है. और व्यष्टि सूक्ष्म प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और व्यष्टि कारण आनंदमय. समष्टि स्थूल विराट और समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ और समष्टि कारण यहां अव्यक्त माया. ठीक कह रहे, अव्यक्त यानी माया. अत्र अस्मिन् अन्नमयादि आनंदमयांते देहे, व्यष्टि में और समष्टि में विराट आदि अभ्याकृतांते वा प्रपंच. वा माने विकल्प, अथवा समष्टि में विराट आदि अव्यक्त अंत. इस व्यष्टि समष्टि और स्थूल सूक्ष्म और कारण समग्र प्रपंच प्रपंचे पूर्व पूर्व उपाधि प्रविलयेन उत्तर उत्तरम अपि असनादि असंस्पृष्ट वाचाम अवगोरचम ब्रह्मविदो विदित्वा। उस ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? पूर्व पूर्व उपाधियों को उत्तर उत्तर उपाधियों में विलय करते जाना। कैसे करना? अन्नमय को प्राणमय में लय करना यानी बात करना, अन्नमय सहित प्राणमय को मनोमय में लय करो अर्थात बात करो, और उस प्राणमय अन्नमय सहित मनोमय को विज्ञानमय में लय करो, और अन्नमय से लेकर विज्ञानमय को आनंदमय में लय करो। ये पूर्व पूर्व उपाधि को उत्तर उत्तर उपाधि में विलय करते जाओ। ये व्यष्टि में, और समष्टि में विराट को हिरण्यगर्भ में, और हिरण्यगर्भ को विराट सहित हिरण्यगर्भ को अव्यक्त में यानी माया में विलय करो। इस तरह समष्टि और व्यष्टि दोनों को विलय करो। या इसकी दूसरी प्रक्रिया भी है, व्यष्टि स्थूल को समष्टि स्थूल में लय करो। व्यष्टि स्थूल क्या है? अन्नमय। व्यष्टि स्थूल उपाधि अन्नमय है तो उसको समष्टि स्थूल उपाधि किस में लय करो? विराट में लय करो। तो व्यष्टि का समष्टि में विलय। इसी तरह व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि को समष्टि सूक्ष्म उपाधि में लय करो, तब प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि है, इनको हिरण्यगर्भ में लय करो। तो इसी तरह व्यष्टि कारण उपाधि को आनंदमय कोश को अविद्या को समष्टि कारण में लय करो, अव्यक्त में यानी माया में लीन कर दो। तो अब इस तरह पहले व्यष्टि को समष्टि में लय करो, फिर इस समष्टि की उपाधि को भी पूर्व उपाधि को उत्तर उपाधि में लय करो। तो विराट को हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को अव्यक्त में, तो अब बचा केवल अव्यक्त है ना, तो अब केवल अव्यक्त यानी माया बची। उस माया अविद्या को उसी के अधिष्ठान में विलय करो। किस तरह? रज्जुम सर्पैव, दृष्टांत दिया ना पहले, क्योंकि सर्प को कहां लय करना है? रज्जु में। इसी तरह सब समष्टि और व्यष्टि का उपाधियों का पूर्व पूर्व उपाधियों का सबसे उत्तर लास्ट उपाधि अव्यक्त, उसमें सभी का लय करो, व्यष्टि समष्टि स्थूल सूक्ष्म को। अब केवल यदि अव्यक्त रहती है तो उसको उसी का जो अधिष्ठान है शुद्ध ब्रह्म, उसमें उसको लय करो। लय करो का मतलब शुद्ध ब्रह्म में माया नहीं है, यही निश्चय करना है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है, जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में अव्यक्त नहीं है। तो जब अव्यक्त ही नहीं है तो स्थूल समष्टि कहां से रहेगा? अव्यक्त ही नहीं रहे तो स्थूल व्यष्टि कहां रहेगा? अव्यक्त ही नहीं रहा तो सूक्ष्म समष्टि कहाँ रहेगा, अव्यक्त ही नहीं रहा तो, सूक्ष्म व्यष्टि कहाँ रहेगा, अव्यक्त ही नहीं रहा तो, फिर समष्टि कारण कहाँ रहेगा, अव्यक्त ही नहीं रहा तो व्यष्टि कारण कहाँ रहेगा, आनंदमय आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। इस तरह पूर्व पूर्व उपाधियों का उत्तर उत्तर उपाधियों में लय करते हुए उस प्रसंग को यहां दिखाया। कथम आत्मानं पश्यतो मोक्ष सिद्धि, आत्मा के दर्शन के बाद मुक्ति कैसे संभव है, तो उसको मुक्ति का संभव या आत्मदर्शन को संभव दिखाने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं। अत्र अस्मिन् अन्नमयादि आनंदमय अंते देहे विराटादि अव्याकृतांते वा प्रपंचे पूर्व पूर्वोपाधि प्रविलयेनो उत्तरो उत्तरम अपश्यन्। पूर्व का उत्तर में लय करके उत्तर में पूर्व को न देखना है ना, उत्तर में पूर्व को न देखना, समझ गए ना। सर्प को रस्सी में बांध करके रस्सी में फिर दोबारे सर्प को न देखना, यही ना हो गया। रस्सी में सर्प को बांध करके दोबारे उस रस्सी में सर्प को न देखना, सर्प में रस्सी में सर्प बांध हो गया एक बार, फिर दोबारे न देखना है ना, अपश्यता। उत्तरम उत्तरम अपि असनाद्य असंस्पृष्टम, भूख और प्यास आदि अनेक विकारों से असंस्पृष्ट, वाचाम अगोर अगोचरम, जो वाणी का भी विषय नहीं है, ब्रह्म ब्रह्मविदा ब्रह्म विदित्व, ब्रह्म को जानने वाले उस शुद्ध ब्रह्म को जानकर, ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्मविदा ब्रह्मज्ञानी लोग उस शुद्ध ब्रह्म को जानकर, ब्रह्मविदो विदित्व लीना ब्रह्मणी, ब्रह्मणी लीना ब्रह्म में लीन करके, किसको विश्वादि उपसंहार मुखे न, ये विश्व तेजस और प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ और अव्यक्त, विश्वादि विश्वादि उपसंहार मुखे न, संहार विधि से, मुखे न माने विधि से, संहार विधि का मतलब होता है अथात्वा आदेश नेति नेति है ना, अथात्वा आदेश नेति नेति, ये संहार विधि है, न इति न इति न इति, तो सबका संहार करके, सबका संहार माने बाप का भी संहार करो मां का भी संहार करो, मां बाप सबको मार डालो, हाँ। अब जब मेरा जन्म ही नहीं होना है तो मां बाप कहां से आएंगे, तो मां बाप का संहार हुआ कि नहीं। तुम शरीर के जन्म को अपना जन्म मानते हो तब तो फिर मां बाप ये खड़े होंगे नहीं, और जब तुम शरीर के जन्म को अपना जन्म नहीं मानते हो तो फिर मां बाप का संबंध शरीर के साथ है, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे मां बाप कहां रह गए, किसके मां बाप रहे, किसके मां बाप रहे, शरीर के मां बाप रहे, रहे ना रहे, ना रहे, तुम्हारे तो मां बाप सिद्ध ही नहीं हुए ना। कभी कभी बड़ी समस्या आ जाती है, प्राय करके हमसे यही पूछते हैं, कहीं नई जगह जाओ, आप लोग तो नहीं पूछते हो क्योंकि आप लोग समझ गए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजियो ब्रह्मज्ञान, तो कुछ नए नए जो हैं वो लोग पूछ बैठते हैं पहले, तो महाराज आपका जन्म कहां है, कहां का है, कहां हुआ है, आप कहां के हैं, पहले पूछते हैं कि आप कहां के हैं, तो हम कह देते हैं कि तुम जहां के हो वहीं के हैं। उटपटांग उत्तर हो गया कि नहीं बोलो है? अब वो पूछ रहे कि तुम कहां के हो, तो हम कहते हैं कि तुम जहां के हो वहीं के हैं। तो कहता है महाराज मैं तो बंबई का हूं। अब तुम बंबई के हो तो हम भी बंबई के हैं, तो बंबई किस जगह के और तुम जिस जगह के हो उसी जगह के। ये कोई उत्तर हुआ? नहीं नहीं, मेरा आशय है कि आप कहां जन्मे हैं, आप कहां पैदा हुए, आपका बर्थ पैलेस कहां है। तो हम फिर कह देते हैं कि हमारा जन्म नहीं हुआ है। फिर हम सीधे कह देते हैं कि हमारा जन्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कहां आपका जन्म हुआ, कब हुआ, आप कितनी वर्ष के हो गए। अरे भाई पहले तो हमारा जन्म सिद्ध हो, तब जाके देश सिद्ध हो, तब जाकर काल सिद्ध हो। जब हमारा जन्म ही नहीं है तो देश कहां से सिद्ध होगा और काल कहां से सिद्ध होगा। काल सिद्ध नहीं होगा तो कितने वर्ष के हो गए आप, ये उत्तर दिया नहीं जा सकता। देश सिद्ध नहीं हुआ तो आप कहां पैदा हुए हैं, ये सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जब पैदाइश नहीं हुई है। जो पैदा होगा वो किसी देश में पैदा होगा या किसी काल से संबंधित होकर पैदा होगा, है ना। और जो पैदा ही नहीं हुआ है तो भाई ये तुम्हारा ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म नहीं हुआ है। वो बिगड़ जाता है फिर। तो आपका जन्म नहीं हुआ है तो यहां कैसे आ गए, पूछ बैठता है। तो हम कहते हैं कि हमारे यहां होने में, तुम्हारे सामने होने में हमको पैदा होने की जरूरत नहीं है। शरीर का पैदा होने से सारा काम बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। शरीर के पैदा होने से हम तुम्हारे आगे भी बैठ जाएंगे, तुम्हारे पीछे भी बैठ जाएंगे। तुम्हारे आगे पीछे बैठने के लिए तो शरीर के पैदा होने से पर्याप्त होगा कि नहीं, क्योंकि आगे पीछे तो ये शरीर बैठने वाला है ना, था हम बैठने वाले थोड़ी है। यहां आना यहां नहीं रहना ये सब शरीर के जन्म से संभव है। अब तुम ईमानदारी से बताओ मुझे कि तुम मेरे जन्म के बारे में जानना चाहते हो कि शरीर के जन्म के बारे में, तुम ईमानदारी से पूछ लो। एक ही तो चीज है। हमने कहा कहां एक ही चीज, किसने कह दिया दोनों एक चीज है। जो शरीर है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही शरीर है। तो हम पूछ लेते हैं कि तुम कौन से धर्म मान लेते हो, कौन सा धर्म मानते हो तुम। जब ये कहते हैं ना कि दोनों एक ही तो है, तो फिर हम पूछ लेते हैं कि तुम कौन से धर्म मानते हो। हम तो हिंदू हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म मानते हैं। हमने कहा ये एक ही तो है, ये कहने वाला हिंदू नहीं है। बोलो सही रूप में हिंदू है। हिंदू कौन है, किसको हिंदू कहोगे। जो वेद और वेद सम्मत बातों को मानता है उसी को ना हिंदू कहोगे। किसको कहोगे हिंदू, बोलो है? जिसने आपने सारी दर्शन और सारे धर्म कर्मों का आधार वेद को माना है। तो कल एक अमेरिका का कोई पत्रकार यानी रिसर्च कर रहा है, वो उसके लिए आया होगा यहां, तो बंबई के एक कोई पत्रकार लेडी है उससे वो संपर्क में आया और उसी के माध्यम से वो अपने रिसर्च को यहां अपना कार्य कर रहा है। तो मराठी भाई है लेकिन वो हिंदी अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषा बोलती है। दैनिक जागरण इंग्लिश एडिशन के वो पत्रकार है, तो वो उसको लेके आए पूरे दो घंटे कल डिस्कशन हुआ। उसका रिसर्च का विषय था, आप लोगों के भाषा में यानी अंग्रेजी में, पॉपुलेशन और एनवायरमेंट यानी जनसंख्या और वातावरण, है ना। तो यही अर्थ हुआ वातावरण। तो उसी बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था, तो वो अनुवाद करती गई, हम उसका फिर हमको हिंदी में समझाई, फिर हम हिंदी में बोले, उसको उसको समझाया, तो बहुत डिस्कशन हुआ। तो यही चीज है। तो हमने कहा तुम कौन से धर्म को मानते हो, जैसे कल हमने बताया था ना। तो उसने पूछा तो हिंदुओं का जो होली बुक्स है, धार्मिक पुस्तक क्या है, हमने कहा गीता, रामायण, भागवत आदि, ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इनके आधार पर हमारे सारा धर्म का आधार है और उनके कहे अनुसार हमारा धर्म चलता है, हिंदू धर्म। तो उसने कहा कि वेद आपका होली बुक्स नहीं है। तो हमने कहा वेद तो होली बुक्स नहीं है, वो सुपर होली बुक्स है। हमको भी उसी की भाषा में कहना पड़ेगा कि नहीं, वो तो एकदम सुपर होली बुक्स है, वो फादर नहीं है, ग्रैंड फादर है। तो हंसने लगा वो। तो हमारे ये दो कैटेगरी है, मूल हमारा आधार तो वेद है ना। तो हम जब सनातन धर्म को मानते हैं, वो हम पूछते हैं ना कि तुम कौन से धर्म को मानते हो, तो हम तो हिंदू हैं। तो तुम हिंदू हो और फिर ये बात कह रहे हो कि जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है, ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो। हमारे वेद ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है, शरीर आत्मा एक ही तो है। ये गलती हिंदू नहीं कर सकता है, करेगा? इसका मतलब उसको हिंदू शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू शास्त्रों को कोई जानता नहीं, कुछ मतलब नहीं है, हिंदू के मर्म को नहीं जानता है, हिंदू फिलॉसफी को नहीं जानता, हिंदू रिलीजन को नहीं जानता, कहे फिर रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। तुमने गीता पढ़ी है कि नहीं, कि हमारे सनातन धर्म में ये बात कही जाती है कि शरीर के उत्पत्ति होने पर भी आत्मा जन्मता नहीं और शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता। बोले हां, ये बात तो हमने कई बार सुना है कि शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता।